ये आदमी मतलबी है, चालाक है, जिसे देखेगा उसे चाहने का नाटक करेगा। आज शालिनी, कल कोई और। मुझे समझ लेना चाहिए था, इसे तो बस जिस्म चाहिए। प्यार नाम की कोई चीज इसके लिए मजाक है। रैना की आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। उसने हथेली से उन्हें पोंछने की कोशिश की, मगर हर बार नए आंसू उतर आते। वो बिस्तर पर बैठ गई, फिर अचानक उठकर फिर से टहलने लगी। उसके कदम बेचैन थे, जैसे वो अपनी ही कैद से भागना चाह रही हो। पर क्यों, क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है? अगर वो शालिनी के साथ है तो मुझे क्या? आखिरकार शालिनी ही उसकी पहली पसंद रही है, हमेशा, और मैं तो कभी उसकी दुनिया का हिस्सा थी ही नहीं। उसने खुद से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब दिया। क्योंकि मैं पागल थी, मैंने उसे अपना दिल दिया, जबकि उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। प्यार तो कभी था ही नहीं उसके पास, जो था वो सिर्फ जिस्म की भूख थी, और मैं उस भूख को ही प्यार समझ बैठी। वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई, अपने चेहरे को गौर से देखने लगी। आंखें सूझी हुई, बाल बिखरे और चेहरा थका हुआ। क्या यही हूं मैं, एक ऐसी औरत जो किसी मतलबी आदमी के लिए आंसू बहा रही है? नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे उसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो चाहे शालिनी के साथ रहे, चाहे किसी और के साथ, मुझे क्यों फर्क पड़े? पर पड़ता है, हाँ पड़ता है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अखिल ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, कभी मुझे चुना ही नहीं। रैना ने एक लंबी सांस ली, उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से फुसफुसाई, बस अब और नहीं, अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं टूटूंगी नहीं। जो आदमी मुझे कभी चाहता ही नहीं था, उसके लिए खुद को क्यों बर्बाद करूं? वो धीरे धीरे बिस्तर पर आकर बैठ गई। हाथों को घुटनों पर टिकाकर उसने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर आंसू अब भी थे, लेकिन उनमें गुस्से की ज्वाला भी चमक रही थी। अखिल, तुम सिर्फ एक ख्वाब थे, और वो भी गंदा, झूठा और सड़ा हुआ ख्वाब। अब मैं तुम्हारे बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें दृढ़ता झलक रही थी। कुछ देर तक वो चुप बैठी रही, कमरे की घड़ी की टिक टिक गूंजती रही। फिर उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब एक अजीब सी कठोरता थी। अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब सचमुच फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसने खुद से ये वादा किया। मगर दिल के किसी कोने में अब भी दर्द की लहरें उठ रही थी, वो दर्द जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि वो चाहकर भी अखिल से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही। रैना बार बार कमरे में चक्कर लगाते लगाते पसीने से तर हो गई थी। उसके माथे से बूंदे लुढ़क रही थी और गले के पास तक कपड़े भीगने लगे थे। उसने झुंझलाकर फोन उठाया और रिसेप्शन पर कॉल मिलाई। रूम सर्विस, जल्दी से मेरे कमरे में एक कोल्ड ड्रिंक भेजो। कुछ ही देर में हल्की दस्तक हुई, दरवाजा खुला और नौकरानी एक ट्रे में ठंडी बोतल और ग्लास लेकर अंदर आई। रैना ने झट से बोतल उठाई और बिना रुके आधा ग्लास कटक गई। नौकरानी ने हैरानी से उसे देखा। अरे मैडम, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, सब ठीक तो है? चेहरा भी लाल लग रहा है। रैना ने गुस्से से बोतल मेज पर पटकी और भारी सांस लेते हुए बोली, कुछ नहीं, बस किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वही इंसान जो खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझता है और असल में है कुछ भी नहीं। उसकी आवाज में तिक्तता थी। नौकरानी ने चुपचाप सिर झुका लिया और ट्रे उठाकर बाहर निकलने लगी। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से अखिल गुजर रहा था। उसके कदम धीमे हुए, रैना की तीखी आवाज उसके कानों में साफ उतर गई थी। वो इंसान जो अपने आप में कुछ ज्यादा ही बनता है। अखिल का चेहरा एक पल को सख्त पड़ गया। उसने रुककर दरवाजे की ओर देखा, मगर फिर बिना कुछ कहे खामोशी से आगे बढ़ गया। रैना को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी कही बातें सीधे अखिल के कानों तक पहुंच चुकी थीं।